नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यानंता सिंह से समाचार सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की राजकीय यात्रा पर आज सुबह भूटान पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से याचिका वापस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की दो दिन की राजकीय यात्रा पर आज सुबह पारो हवाई अड्डे पहुंचे। भूटान के उनके समकक्ष शेरिंग डॉबगे ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सांगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ग्यालसोयन गेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यह अत्याधुनिक अस्पताल भारत की सहायता से बनाया गया है। ये यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुरूप है। दिल्ली विधानसभा का आज होने वाला विशेष सत्र रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद किया गया है। सदन की अगली बैठक 27 मार्च को होगी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट से जबकि पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वेथलिंगम पुदुचेरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध दायर की गई याचिका वापस ले ली है। सूत्रों के अनुसार वे अब निचली अदालत में जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता की कविता की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई करने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद यह फैसला आया है। के कविता को पिछले सप्ताह इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। के कविता मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को ही अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े दिल्ली शराब नीति घोटाला में श्री केजरीवाल का नाम लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें नो समन जारी किया था। श्री केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताकर उनकी अनदेखी की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के पूर्व मंत्री दामोदर राउत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश और ओडिशा की प्रगति में श्री राउत के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने बीजेडी के नेता के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। इस महीने की शुरूआत में दामोदर राउत के हृदयघात से पीड़ित होने के बाद पिछले कई दिनों से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। वे 82 वर्ष के थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश में अंतरिक्ष यान की पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मोड में संचालन, लैंडिंग और ईंधन प्रबंधन के लिए टीम को बधाई दी। इसरो ने अंतरिक्ष यान RLV LEX-02 की सफल लैंडिंग के साथ नेविगेशन नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और गति को कम करने वाली प्रणालियों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एक बार फिर से स्थापित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में आज सुबह से राज्य के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बोलपुर स्थित आवास पर छापेमारी कर परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ईडी कोलकाता में चेतला, लेक टाउन और बिरादी सहित 5 स्थानों पर भी तलाशी ले रही है। होली के त्यौहार 25 मार्च के दिन रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सेवाएं दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेगी। बिहार के सुपौल जिले में आज सुबह कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने आकाशवाणी को बताया कि बचाव कार्य जारी है। 6 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। ये पुल मधुबनी और सुपौल जिलों के बीच भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है। पंजाब में कीरतपुर साहिब के गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब में ऐतिहासिक और पारंपरिक होला महल्ला कल से शुरू हो गया है। इस अवसर पर तख्त श्री केसरगढ़ साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी सुल्तान सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी भी मौजूद रहे। होला महल्ला कीरतपुर साहिब और अनंतपुर साहिब में 3-3 दिन तक चलेगा। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छ जल के महत्व को देखते हुए यह दिन हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस लोगों, संगठनों और सरकारों को पानी से संबंधित तत्काल चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मंच पर लाता है। यह दिन शैक्षिक कार्यक्रमों और समुदाय संचालित अभियानों के माध्यम से सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास है। इस वर्ष जल दिवस की विषय वस्तु समृद्धि और शांति के लिए जल है। ये दुनिया भर में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इस वर्ष विश्व जल दिवस सभी की पानी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और शांति स्थापना के लिए एक माध्यम के रूप में पानी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सिफारिशों के बाद 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव शक्तिशाली नई प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वैश्विक समर्थन देता है। नई प्रौद्योगिकी सभी राष्ट्रों के लिए लाभकारी है और ये मानव अधिकारों का सम्मान करती है। ये सुनिश्चित और विश्वसनीय है। ये प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित है। इस प्रस्ताव को बिना किसी वोट के सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई है। इस तरह इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन हासिल है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज रात किदांबी श्रीकांत का सामना ताइवान के चिया हाउली से होगा, जबकि किरण जोश का मुकाबला डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा। इसी वर्ग में प्रियांशु राजावत ताइवान के टीएन चेन चाओ से भिड़ेंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को सीधे सेटों में हराया था, जबकि युवा खिलाड़ी किरण ने फ्रांसीसी एलेक्स लेनियर को मात दी थी। प्रियांशु ने चीन के ले नैन शी को हराया है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होगा। इस सीजन का शुरुआती मैच पिछली बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच चेन्नई के एमएच चिदम्बरम स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। क्रिकेट के प्रशंसक इस स्पर्धा में एमएस धोनी और विराट कोहली को एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हुए देखने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों को कल एक बड़ा झटका लगा जब टीम ने अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की जगह नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के नाम की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रगुड़ परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश में अंतरिक्ष यान की पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मोड में संचालन, लैंडिंग और ईंधन प्रबंधन के लिए टीम को बधाई दी। इसरो ने अंतरिक्ष यान RLV LEX-02 की सफल लैंडिंग के साथ नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और गति को कम करने वाली प्रणालियों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एक बार फिर से स्थापित किया है। फिर से एक बार मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आज सुबह भूटान पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से याचिका वापस ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। India and Bhutan today exchanged several agreements of mutual interest to further strengthen countries' unique ties with Himalayan nation. The documents were exchanged between India and Bhutan in the presence of Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Bhutan Sering Tobge in Thimphu. Mr. Modi reached Paro International Airport this morning on a two-day state visit to Bhutan. He was also accorded a ceremonial welcome on his arrival. Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal has withdrawn the petition from the Supreme Court against his arrest by the Enforcement Directorate in connection with the excise policy-linked money laundering cases. According to sources, the AAP leader will now approach to lower court in accordance with the protocol. It comes hours after the apex court denied any relief to Bharat Rashtra Samiti leader K. Kavita earlier in the day. She was arrested in the same case last week. During the hearing of her matter, the special bench of justices Sanjeev Khanna, M.M. Sundaresh and Bela Trivedi said it cannot allow people to directly approach the top court for bail just because they are politicians or can afford to approach the top court directly. On the arrest of Delhi Chief Minister, BJP spokesperson Sambit Patra has said that Mr. Kejriwal is keep 9 summons issued to him and he must respect the summons. Aam Aadmi Party leader Atisi alleged that the top leaders of her party have been arrested on false charges. She claimed that for the first time, a sitting chief minister has been arrested by the government. The Aam Aadmi Party members have staged protests in different parts of Delhi today. Congress leader K.C. Venugopal has alleged that the central government is misusing the enforcement agencies and the Congress party stands with Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. The Indian Space Research Organization successfully executed a landing mission for its reusable launch vehicle named Pushpak this morning from the aeronautical test range at Chitradurga in Karnataka. In a social media post, ISRO said that it has nailed the precise landing of the winged launch vehicle RLV in autonomous mode. ISRO chairman S. Somnath congratulated the team for the flawless execution of maneuvering, high-speed landing and energy management of the spaceship in a fully autonomous mode. World Water Day is being celebrated today. The day is observed every year on 22nd of March to honor the importance of fresh water. World Water Day brings people, organizations and governments together to confront urgent water challenges and strive toward guaranteeing that everyone has access to clean water and sanitation through awareness-raising events, educational programs and community-driven campaigns. The theme for this year is Water for Prosperity and Peace. It emphasizes the critical role water plays in fostering cooperation and stability around the world. In a video message on social media post on the occasion, Prime Minister Narendra Modi said that the government is committed to work towards sustainable water management. In Bihar, one person was killed and 10 others were seriously injured when a portion of under-construction bridge over Kosi River collapsed in Supaul district this morning. The injured were admitted to the nearby hospitals. Talking to Akashvani News, Superintendent of Police Saisav Yadav said rescue operation is underway as 6 labourers were still trapped in the debris. In cricket, the Indian Premier League Tournament 2024 will begin this evening at Chennai in Tamil Nadu. The opening match will be played between the defending champions Chennai Super Kings and Royal Challengers Bengaluru. The match will begin at 8 p.m. Cricket fans are eagerly waiting for the game as both MS Dhoni and Virat Kohli will be seen in action against each other. However, CSK fans faced a major blow yesterday after the team announced Rituraj Gaikwad as their new captain, replacing veteran player Mahendra Singh Dhoni. In Swiss Open badminton, ace Indian settlers including Kidambi Srikanth, Kiran George and Priyanshu Rajawat will be playing their quarterfinals matches of the men's singles tonight at Basel in Switzerland. Kidambi will face Li Chiahao of Chinese Taipei, Kiran will meet Rasmus Gamke from Denmark, while Priyanshu will be up against Chao Tien Chen of Chinese Taipei in the last 8 clashes. India's Gayatri Gopichand and Teresa Joly will lock horns with Australian combination of Setiana Mapasa and Angela Yu in quarterfinals of the women's doubles this evening. That's all in the news bulletin. Namaskar.